हरे कृष्ण। बलराम जी भगवान के शाश्वत सहचर हैं। राम के साथ लक्ष्मण के रूप में, कृष्ण के साथ बलराम के रूप में तथा चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु के रूप में वे सदैव भगवान की हर लीला में उनकी सेवा करने के लिए उपस्थित रहते हैं। बलराम जी भगवान कृष्ण के सेवक स्वरूप हैं। उनका सदैव एक ही लक्ष्य रहता है कि भगवान को किस तरह प्रसन्न किया जाए। हमारे वक्ता श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी हमें श्री बलराम तत्व, उनके प्राकट्य तथा ब्रज में उनकी लीलाओं के विषय में हमें बताएंगे। श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी मुंबई विश्वविद्यालय से साइंस में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संपर्क में आए। लगभग 20 वर्षों से वे इस्कॉन में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में वे इस्कॉन कारवार कर्नाटक के अध्यक्ष हैं। वह विभिन्न कॉलेजों तथा कंपनियों में मन पर नियंत्रण, मृत्यु के पश्चात जीवन, सफल शिक्षण कौशल व एकाग्रता तथा स्मरण शक्ति पर सेमिनार भी लेते हैं। प्रभु जी भारत में गोवा, मुंबई, मैंगलोर, बेंगलोर एवं वृंदावन तथा विदेशों में जैसे केन्या, युगांडा, जाम्बिया व मल्लावी में भी सेमिनार लेते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं अनेक मधुर व दिव्य लीलाओं के अमृत सागर श्री बलराम जी के विषय में श्रीमान अतुल कृष्ण प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ लेता है, ये जान लेता है कि मेरे जन्म साधारण नहीं है, मेरे कर्म साधारण नहीं है, जन्म कर्म च मे दिव्यम वे दिव्य हैं, एवं यो वेत्ति तत्वतः, अगर उसको कोई तत्वतः जान लेता है तो फिर त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति, फिर उसके बाद जब वो अपने देह को छोड़ता है तो उसको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। तो कहा जाता है क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, तो अगर पुनर्जन्म नहीं लेता तो कहाँ जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के भी जन्म होता है भगवान स्वयं कहते हैं उसकी मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसको जन्म लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि त्यक्त्वा देहम, जब देह छोड़ देता है तो फिर से जन्म नहीं लेता। क्यों? क्योंकि भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानकर, तत्वतः उसको समझकर, वो भगवान के धाम वापस चला जाता है, इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसता। तो इसीलिए भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ लेना चाहिए। भगवान अलग अलग रूपों में यहाँ पर आते हैं। वैसे जब भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं तो कई कार्य करते हैं, लेकिन जब वे वृंदावन में आते हैं अपने मूल रूप में, तो उस समय जो उनके कार्य होते हैं वो बड़े भ्रम में डालने वाले हैं, वो लीलाएं हैं जो भ्रम में डालती हैं। क्यों? क्योंकि देखते हैं कि बहुत साधारण कार्य कर रहे हैं, साधारण व्यक्ति की तरह कार्य कर रहे हैं। इसीलिए भागवत में कहा गया है, कृतवान किल कर्माणि सह रामेन केशवः अतिमर्त्यान भगवान गूढ़ा कपट मानुषः। भगवान लीलाएं करते हैं, कृतवान किल कर्माणी, कैसे करते हैं, सह रामेण केशवः। बलराम जी के साथ भगवान कृष्ण आए और उन्होंने बहुत सी लीलाएं की। कृतवान किल कर्माणी सह रामेण केशवः, अतिमर्त्यान भगवान गूढ़ा कपट मानुषः। अपने आप को छुपा लेते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो साधारण व्यक्ति हैं। भगवान रोते हैं, भगवान हंसते हैं, भगवान खेलते हैं एक साधारण बालक की तरह। तो इसीलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन है वो भगवान अतिमर्त्यान भगवान गूढ़ा कपट मानुषः, वही भगवान है जो पूर्ण रूप में प्रकट होते हैं। और साथ में कौन आते हैं, सह रामेन केशवः, राम अर्थात बलराम जी आते हैं। तो बलराम जी ये कौन हैं, इसको समझना चाहिए। भगवान अपना सबसे पहला विस्तार करते हैं आध्यात्मिक जगत में बलराम जी के रूप में। बलराम जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक ही भगवान है, बस केवल रंग का अंतर है। इसीलिए कहा गया है, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काया, आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला रसहाया। बलराम जी के विषय में कहा गया है कि कौन है बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण जो सारे अवतारों के स्रोत हैं, वो अवतारी हैं, वो अवतार नहीं हैं। कई बार लोग उन्हें अवतार मान लेते हैं, कहते हैं कि विष्णु का अवतार है, लेकिन शास्त्र ये नहीं कहता, शास्त्र में इसका अनुमोदन नहीं किया गया, क्योंकि श्री कृष्ण अवतारी हैं। इसको श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वो कहते बहुत सारे अवतार हैं, ये ते चामच कलह पुमसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। तो इसीलिए कहा गया सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तो उनमें उनको अवतार नहीं मानना चाहिए। ये लोगों में बड़ी भ्रांति है कि वो विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार हैं, ऐसा नहीं है, वे अवतारी हैं। तो सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह श्री बलराम, और उनका ही दूसरा रूप, उनका दूसरा शरीर, उनका दूसरा देह बलराम जी हैं। और क्या अंतर है, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काया, एक ही स्वरूप है, अंतर क्या है, रंग का। बलराम जी गोरे हैं और श्री कृष्ण काले हैं। वैसे श्री कृष्ण काले नहीं हैं, उनका वर्ण श्याम वर्ण है। शास्त्रों में वर्णन हुआ है कि ये जो श्याम वर्ण है, ये सारे रंगों से मिलकर बना हुआ रंग है, या दूसरे शब्दों में कह देना चाहिए कि सारे रंगों का स्रोत, जिनसे सारे रंग आते हैं, ऐसा रंग है श्याम वर्ण। तो और क्योंकि वो एक आध्यात्मिक रंग है, हम अभी अपनी भौतिक इंद्रियों से उसको समझ नहीं सकते, इसीलिए केवल एक हमें कल्पना या तुलना देने के लिए ये कहा जाता है कि वो घनश्याम बादल की तरह हैं, जब बादल वर्षा के बादल होते हैं जिनमें जल होता है इत्यादि, अन्यथा श्याम वर्ण बहुत सुंदर है। तो श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं और बलराम जी गोरे, केवल यही अंतर है, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काया। तो फिर प्रश्न आता है कि अगर दोनों एक ही हैं तो फिर क्या आवश्यकता हुई बलराम जी का रूप लेने की, बताते हैं, कृष्ण लीला रसहाया, आद्य काया व्यूह कृष्ण लीला रसहाया, कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए बलराम जी का रूप होता है। यह कहना चाहिए कि एक सेव्य भगवान है और दूसरे सेवक भगवान है, सेवक जो सेव्य की सेवा करता है। तो भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए, भगवान की लीलाओं के आनंद को बढ़ाने के लिए बलराम जी प्रकट होते हैं। तो बलराम जी कैसे सहायता करते हैं भगवान की, तो सबसे पहले इस भौतिक जगत, इस सृष्टि की रचना में वो सहायता करते हैं। तो कैसे करते हैं वो सहायता? बलराम जी सबसे पहले अपना विस्तार करते हैं चतुर्व्यूह के रूप में, फिर उन चतुर्व्यूह के संकर्षण से और एक चतुर्व्यूह आते हैं, फिर उनसे भगवान महाविष्णु आते हैं। अब ये महाविष्णु ये सृष्टि की रचना का प्रारंभ करते हैं, इनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। महाविष्णु विश्राम करते हैं कारण सागर में। कारण सागर का जल, या जिसको विरजा भी कहा जाता है, तो महाविष्णु उसमें विश्राम करते हैं और उनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर वही महाविष्णु अपना विस्तार कर लेते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में और हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। फिर वो ब्रह्मांड में देखते हैं कि कोई स्थान नहीं है, तो फिर अपने ही शरीर के पसीने से आधा ब्रह्मांड भर देते हैं और फिर उस पर वो निवास करते हैं। इसीलिए उन्हें गर्भोदक्षाय विष्णु कहा जाता है। तो एक है महाविष्णु या कारण सागर में निवास करने वाले कारणोदक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, और फिर आगे चलकर और एक विस्तार करते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो क्षीर सागर दूध के सागर में विश्राम करते हैं। और साथ ही साथ बलराम जी अनंत का रूप भी लेते हैं। तो एक तरफ इन विष्णु का रूप लेते हैं जो सृष्टि की रचना में सहायता करते हैं, दूसरी तरफ अनंत का रूप लेते हैं। अनंत अर्थात जो अनंत काल से अनंत रूपों में अपने अनंत मुखों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं और साथ ही साथ इन सारे ब्रह्मांडों को धारण भी करते हैं। तो अनंत ये भगवान के भक्त अवतार रूप हैं, अर्थात ये भक्त के रूप में केवल सेवा को प्राधान्यता देते हैं, अर्थात सेवा ही इनका जीवन है। तो ऐसे बलराम जी अनंत के रूप में फिर अपने आप को प्रकट करते हैं और भगवान की लीलाओं में सहायता करते हैं। वैसे बलराम जी और भी कई रूपों में कृष्ण की सेवा करते हैं, जैसे वे भगवान के जितने भी चीज़ें हैं वो बलराम जी का रूप हैं। जैसे अगर भगवान के लिए छतरी की आवश्यकता है तो बलराम जी प्रकट करते हैं या बलराम जी रूपांतरण करते हैं। भगवान के खड़ाऊँ पहनना है, भगवान को लेटना है, तो बिस्तर बलराम जी बन जाते हैं। भगवान के कपड़े, वो भी बलराम जी बन जाते हैं। सब कुछ, भगवान का धाम भी बलराम जी प्रकट करते हैं, अर्थात सभी रूपों में वो सेवा करते हैं और इसीलिए हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। जब भी भगवान अवतार लेते हैं अलग अलग रूपों में, तो वो भी बलराम जी भी साथ में आते हैं। जैसे जब रामचंद्र जी आए तो उनके साथ लक्ष्मण का रूप ले लिया, जब श्री कृष्ण आए तो बलराम जी स्वयं आए, और फिर जब चैतन्य महाप्रभु आए आज से करीब 500 वर्ष पूर्व, तो फिर वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। तो ऐसे बलराम जी हर स्थान पर सेवा करते हैं और विशेषतः ब्रज में, जब भगवान ब्रज में लीला कर रहे होते हैं तब भी अलग अलग रूपों में वहाँ पर भी वो भगवान की सेवा करते हैं। तो कैसे सेवा करते हैं ब्रज में? वे भगवान के बड़े भाई के रूप में प्रकट होते हैं और वहाँ पर एक वात्सल्य भाव में उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि बड़े भाई हैं। लेकिन साथ ही साथ साख्य रस में, माधुर्य रस में, शांत रस में, दास्य रस में, हर रस में वो सेवा करते हैं। शांत रस में वो सारे धाम को प्रकट करते हैं, धाम की चीज़ों को प्रकट करते हैं, भगवान के जो उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं उनको प्रकट करते हैं। तो ऐसे वे सारे दास्य रस में सेवा करते हैं। साख्य रस में उनके सखा के रूप में वो सेवा करते हैं। वात्सल्य भाव तो है ही, क्योंकि वो देखते हैं कि कैसे कृष्ण को कोई कष्ट ना हो। वे सोचते हैं कि मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा कर्तव्य है रक्षा करना। और साथ ही साथ माधुर्य रस में भी वो सेवा करना चाहते हैं। माधुर्य रस में श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, तो बड़े भाई के रूप में ये ठीक नहीं है कि वो रासलीला में प्रवेश करें, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए बलराम जी अनंग मंजरी के रूप में वहाँ सेवा करते हैं। अनंग मंजरी जो श्रीमती राधा रानी की बहन है, तो उनके रूप में प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण के भाई के रूप में बलराम जी और राधा रानी की बहन के रूप में अनंग मंजरी, और फिर वो कृष्ण की माधुरी लीला में भी भाग लेते हैं। तो ऐसे बलराम जी हर स्थिति में हर स्थान पर भगवान की सेवा करते हैं। बलराम जी को आदि गुरु भी कहा जाता है। आदि गुरु अर्थात वो सारे गुरुओं के स्रोत हैं, और आदि गुरु के रूप में क्या सिखलाते हैं? भगवान की सेवा। स्वयं सेवा करते हैं, आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं कि कैसे हमें सेवा करनी चाहिए। तो बलराम जी आदि गुरु हैं, इसीलिए उनका एक नाम है हलधर। हलधर अर्थात जो हल को धारण करते हैं। वैसे तो हल धारण करना ये कृषि का सूचक है, क्योंकि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, कि हमें कृषि और गोरक्षा को महत्व देना चाहिए। तो कृषि का और गोरक्षा का सूचक है भगवान का हल धारण करना। श्री कृष्ण स्वयं गोपाल कहलाते हैं। तो हलधर जो हैं उनका क्या महत्व है, क्यों हल धारण करते हैं? एक महत्व कृषि को प्रधानता दे रहे हैं, दूसरा महत्व आदि गुरु के रूप में बलराम जी जब हल को धारण करते हैं तो वो ये सिखला रहे हैं कि जैसे किसान भूमि पर हल चलाता है, भूमि बड़ी सख्त होती है लेकिन वो हल चलाता है और उसको बड़ा कोमल कर देता है, उस भूमि को तैयार कर देता है, उस भूमि को जिसमें बीज जब बोए जाएंगे तो फसल आ सके। अगर भूमि को जोता नहीं जाए हल से तो फिर उस भूमि में बीज नहीं जा सकते, बीज को रोपा नहीं जा सकता, क्योंकि वो भूमि बड़ी सख्त होती है। और अगर ऐसे बीज डाल भी दिए तो फिर उनसे फल या पौधे नहीं आएंगे। इसीलिए पहले हल के द्वारा उस भूमि को तैयार किया जाता है जिससे वो बीज उसमें रहें और फिर फसल दें। इसी तरह आदि गुरु बलराम जी हैं, हल को धारण करते हैं कि एक ऐसे भक्त के हृदय में, एक ऐसे शिष्य के हृदय में जिसका हृदय बड़ा सख्त है। सख्त का अर्थ क्या है? हृदय की कोमलता किसे कहा जाता है? हृदय की कोमलता वो नहीं है जहां व्यक्ति केवल करुणा दिखलाता रहे हर जीव के प्रति। हृदय की कोमलता है कि हम अपने हृदय को तैयार करें जिसमें भक्ति का बीज बोया जा सके और फिर उससे फसल निकले, उससे ऐसी लता निकले उस बीज से जो सीधे इस ब्रह्मांड को भेदते हुए श्री कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंच सके। तो इसीलिए हलधर अर्थात बलराम जी हमारे हृदय को, एक ऐसे भक्त के हृदय को जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, जो साधना के द्वारा गुरु के आदेशों के द्वारा प्राप्त करना चाहता है जीवन की सफलता को, ऐसे व्यक्ति के हृदय को हल के द्वारा तैयार करते हैं, कोमल बना देते हैं। और फिर जब कोमल हो जाता है, ये गुरु का कार्य है। गुरु का कार्य यही है कि वो शिष्य को तैयार करे जिससे जो भक्ति का बीज प्रदान किया जाए तब वो धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़े। भक्ति का बीज गुरु प्रदान करते हैं और फिर जो संतान होती है वो भक्ति कहलाती है। तो इसीलिए हमारे हृदय में बीज को रोपण करने की तैयारी बलराम जी करते हैं हलधर के रूप में। ऐसे बलराम जी के कई नाम हैं। राम उनका नाम है। राम यानी जो अपने आप में रमण कर लेते हैं, अपने आप में आनंद लेते हैं, और क्योंकि सारे बलों के स्रोत हैं इसीलिए बलराम भी कहलाते हैं। फिर उनके एक और नाम है संकर्षण। संकर्षण अर्थात जो सारे जगत को आकर्षण प्रदान करते हैं। हम जिस जगत में रहते हैं वहाँ एक शक्ति है जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी संकर्षण से आती है, तभी हम लोग खड़े रह पाते हैं। अगर ये शक्ति ना हो तो हम लोग इस पृथ्वी पर खड़े नहीं रह पाएंगे। तो वो भी बलराम जी प्रदान करते हैं। तो संकर्षण का एक और अर्थ है जिनको खींच कर लाया गया। बलराम जी के जन्म की कथा में ये प्रसंग आएगा कि क्यों संकर्षण नाम उनका पड़ा, तो इसीलिए वो संकर्षण भी कहलाते हैं, हलधर भी कहलाते हैं, रोहिणी नंदन कहलाते हैं। बलराम जी के तो बहुत सारे नाम हैं, रोहिणी नंदन अर्थात माता रोहिणी के पुत्र हैं, और ब्रज में उन्हें दाऊ जी कहते हैं, दाऊ जी यानि बड़ा भाई। बलराम जी कृष्ण लीला में बड़े भाई बनकर आए थे, छोटे नहीं बने, क्योंकि जब रामचंद्र जी आए तब वो छोटे भाई बने थे, और छोटे भाई बनकर उनको बहुत सी चीज़ों को सहना पड़ा। लक्ष्मण के रूप में जो भी रामचंद्र जी ने कहा उन्होंने किया, वो तो उनकी सेवा थी, प्रसन्नता से किया, लेकिन कुछ चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि जब सीता को कहा गया कि आप चले जाइए यहाँ से, उनको वन में भेज दिया गया, तो उस समय लक्ष्मण को कहा गया कि वन में छोड़कर आइए, लक्ष्मण के लिए बड़ा दुखदायक चीज़ थी। या अन्य चीज़ों में भी, जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो लक्ष्मण से सहन नहीं हुआ, लेकिन उनको सहन करना पड़ा क्योंकि बड़े भाई का आदेश हुआ। या फिर जब सीता देवी की अग्नि परीक्षा की गई तब भी उनको बड़ा कष्ट हुआ, तो इसीलिए उन्होंने ये प्रण लिया कि अगली बार बड़ा भाई बनकर आऊँगा। लेकिन बड़े भाई बनकर आकर भी सेवा तो कृष्ण की ही करते थे, तो ऐसे बलराम जी अलग अलग रूपों में सेवा करते हैं श्री कृष्ण की। तो बलराम जी के तत्व को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने प्रारंभ में कहा, एवं यो वेति तत्वतः, तो बलराम जी भगवान के विस्तार हैं। भगवान कई रूपों में विस्तार करते हैं। एक प्रकार का विस्तार होता है भगवान का, जहां पर वे उसी रूप में, कोई अंतर नहीं होता, लेकिन विस्तार कर लेते हैं। जैसे रासलीला के समय श्री कृष्ण ने अपना विस्तार असंख्य रूपों में किया, जितनी गोपियां थीं उतने श्री कृष्ण थे, उन विस्तारों में कोई अंतर नहीं था, वही ऐसे के ऐसे। या फिर जब भगवान द्वारिका में रह रहे थे तो अपना विस्तार 16108 रूपों में करते थे, कोई अंतर नहीं, वही कृष्ण। लेकिन दूसरे प्रकार का विस्तार होते हैं बलराम जी, जहाँ हैं वही कृष्ण, थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, जैसे यहाँ रंग का अंतर है। और फिर उनसे आगे कई और विस्तार आते हैं, जैसे महाविष्णु इत्यादि, और फिर अलग अलग अवतार, बहुत से अवतार आते हैं, ये भी बलराम जी के विस्तार हैं। तो कृष्ण विस्तार करते हैं बलराम जी से, और बलराम आगे फिर विस्तार करते हैं। तो इसीलिए इस बात को समझ लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण से सारे अवतार आते हैं, वो सारे अवतारों के स्रोत हैं। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण बहुत सारे अवतारों की तरह केवल एक अवतार हैं। वैसे एक दृष्टि से सभी अवतारों में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, इसको ब्रह्मा जी समझाते हैं। वो कहते हैं कि जैसे एक दीपक को रखा जाए और फिर उससे कई सारे दीपक आप जलाइए, तो सारे दीपक एक समान होंगे, लेकिन फिर भी एक दीपक वो होगा जिससे सारे दीपक जले हैं, मूल दीपक। इसी तरह भगवान के जो विस्तार हैं, अवतार हैं, उनमें भगवान के समान ही शक्ति है, लेकिन फिर भी मूल तो श्री कृष्ण हैं। तो इस प्रकार बलराम जी को समझना चाहिए कि जो भगवान के सबसे पहले विस्तार हैं और सारी चीज़ें भगवान के लिए वो करते हैं, हमें शिक्षा प्रदान करते हैं कि कैसे हमें बलराम जी की तरह ही श्री कृष्ण की सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य मानना चाहिए। वो हमें ये सिखलाते हैं कि हर रूप में जैसे भी हो भगवान की सेवा हमें करनी चाहिए। तो ये बलराम जी प्रमुखता हमें सिखलाते हैं। तो बलराम जी का आविर्भाव कैसे हुआ, कैसे इस पृथ्वी पर आए, क्या क्या उन्होंने लीलाएं की, हम अब आगे आने वाले समय में इसको देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।